नहीं क्या लगाया, उस बगीचे में से एक पेड़ का एक फल हमने लिया, ये बगीचा मेरा है, ये फल मेरा है, और एक फल लेकर के उसमें से भगवान को कहा ये भगवान के लिए अर्पित, बाकी किसका है वो मेरा, मैं खाऊंगा, मेरी बच्ची खाएंगी, मेरे लड़के खाएंगे, मेरे इष्ट बंधु लोग खाएंगे, इसलिए ये सब कर्म का हो जाता है, बंधन का कार्य हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो बात कब तक कहेंगे, जब तक इस स्वरूपानुबंधी न हो, अर्थात वो आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित न हो, तब तक के लिए ये ऐसा ही चलता है। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साधकता, समझा कि नहीं, पहले वाले में है वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करने से, और उसमें जो विष्णु भक्ति है ठाकुर में घर में नारायण शिला रख दिया, कोई रख दिया, और या पट विग्रह रख दिया, उसकी पूजा करते हैं, किसकी, विष्णु की, विष्णु इसमें लिखा, और सबकी पूजा करने से नहीं होगा, देवता देवी और सब ये सब नहीं होगा, वहाँ पर विष्णु शब्द उच्चारण है, इसलिए विष्णु की पूजा यदि कोई करता है किंतु उसमें कामनाएं वासनाएं हैं और उसका फल भी है संसार में सुख, स्वर्ग में सुख या मुख, इसलिए जीवात्मा से संबंधित और भगवान से संबंधित नहीं होते, इसको कहा गया योगा। इसमें कर्म फलों को, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करने की बात कही गई। मनुष्य कौन सा कर्म करता है, जड़ शरीर से जड़ कर्म करता है, जड़ चिंतन से जड़ कर्म करता है, क्या करता है, बगीचा लगाया, ये बगीचा लगाना क्या हुआ, अपने स्थूल शरीर से किया, और बगीचा लगाया और बगीचा हुआ स्थूल, उसका स्थूल फल लेकर के अर्पण करता है, इसलिए भी हो बात आत्मा से कोई संबंधित, और भी किस लिए करता है, अपने सुख के लिए, इसलिए ये सब मृग राजा जो थे उनको अंत में भगवान का दर्शन हुआ था। किसी ने पूछा कि उनको कैसे भगवान का दर्शन हो गया, गायों के दान करने से ही उनको हो गया, कहते नहीं गायों के दान करने से नहीं हुआ, वो तो एक ब्राह्मण ने कहा महाराज इतनी गाय दान करते हैं, हमको एक भागवत पोथी दान कर दीजिए, तो उन्होंने लिखवा करके बड़े प्रेम के साथ में कहा अच्छा ये लो लिख करके, और उनको दे दिया भागवत दान कर दिया, उसका फल हुआ ये भगवान से उनका दर्शन, और उनके स्पर्श से उसके कर्म कर्म जितने थे वो सब समाप्त हो गए, इसके बाद में उनको भगवत हुई, अंत में भगवान से। तो एक भागवत के दान करने से, भागवत माने क्या, भागवत से संबंध किससे है, भगवान से, इसलिए उससे थोड़े से संपर्क से ही इतना बड़ा भारी, और जो भागवत की कथाओं को सुन करके वैसा चित्त बनाएगा परीक्षित जैसा, तो उसको न जाने की आदति होगी, गोपियों के की सेवा में जब उसको लोप हो गया और वैसा आचरण करने लगा था तो का भाव उसको मिल जाएगा। अब वो कहते हैं महाप्रभु जी यो बात जागे कहा आत्मा से आत्मानुबंधी ये धर्म नहीं है, इस फूल शरीर से किया हुआ जन्म वाला कर्म, और उसको भगवान को इस फूल रूप में दे रहे हैं, और अपने सुख के लिए दे रहे हैं, अपने शांति के लिए दे रहे हैं, इसलिए ये भी बात किया है। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साधकता, स्वधर्म त्याग, यहां पर स्वधर्म साध बनाए, आगे बतला अपने समस्त धर्मों को त्याग करके, त्याग करना ही ये साध। अब इसका विवरण आगे देते हैं श्लोक में, आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दृष्टान स्वकान धर्मान संसदीय जस कर्मान मान भजे कर्तव्य समान आज्ञा एवं गुणान दोषा आज्ञा एवं
आज्ञा गुणान दोषा
क्यों सम्यक आ माने सम्यक रूप से ज्ञान माने जानकर क्या जानकर कर्मों का दोष और गुण जानकर अपने धर्म विहित जो धर्म है वर्णाश्रम है वर्ण और आश्रम का धर्म है इसका गुण क्या है और इसका दोष क्या है दोनों पर खूब अच्छी तरह से विचार करके ज्ञान करके अनुभव करके क्या करेगा मैं जिस कान अभी मैंने ही उसका उपदेश दिया है हमारे बतलाए हुए धर्मों के दोष और गुण को जान करके अच्छी तरह से उपलब्धि करके संसत्य अच्छी तरह से भली भांति उसका जो त्याग कर देता है और मान भजे मेरा भजन करता है वो सब सब वो क्या तात्पर्य हुआ फिर से समझो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया चतुर वर्णन मया सिस्टम गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के विभाग से बना किसने बनाया भगवान ने ही बनाया तो चतुर्वर्णन व्याम गुरु कर्म विभाग सत्य कर्तारम अपनी मान विधि अकर्तारम अस्त मैंने बनाया है किंतु हमको ऐसा समझो जो मैंने नहीं बनाया उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है और उन सबके कर्ता भी नहीं है ऐसा मुझको जो जानते हैं ये कर्म मार्ग से निश्चित प्रबंधी है इनका ये बेटा है किंतु इनका बेटा नहीं है भगवान सर्वत्र व्याप्त है किंतु कहीं नहीं है व्याप्त है ये कैसा होगा कृष्ण यशोदा के पुत्र हैं किंतु किसी के पुत्र नहीं है वो अजन अजन्मा है ये कैसा होगा वो कोई भी कर्म नहीं करते सब कर्म किसी भी कर्म से उनका कोई भी संबंध नहीं है किंतु राष्ट्र इत्यादि जितने भी हैं वही करते हैं फिर क्या हुआ मैंने समझ लिया जिसे कैसे होता है बड़े बड़े लोगों को भी मुह्यंत जत सूरया सूरी लोग भी मुक्त पुरुष भी देवता लोग भी मुक्त पुरुष भी अरे बलदेव प्रभु जी मोहित हो जाते हैं तो और हम लोगों की अब ब्रह्मा इत्यादि की तो बात ही क्या वो लोग भी मोहित हो जाते हैं देखो तो इसलिए आज्ञा एवं अर्थात मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने वर्णाश्रम धर्म को भी उसके गुण और दोषों को समझकर समझते हैं कि इसमें दोष ही दोष है जब ऐसा समझ लेते हैं तो उसको छोड़ करके सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं एक तो श्रीमद् भागवत का और दूसरा इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर्व धर्मों को छोड़ करके माम एकम मुझे ही एकमात्र मेरे शरण में जाओ और ऐसा करने से यदि तुम्हें कोई पाप लगता है तो उन समस्त पापों से तुम्हें मुक्त पूरा कोई भी पाप नहीं लगेगा अब इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें इसको गीता का सार बतलाए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम गीता के ऊपर में जब हम विवेचना करते हैं विचार करते हैं बहुत से लोग तो गीता को लाख बार पढ़ते हैं रोज ही पढ़ते हैं नहीं समझते क्या उसका उपदेश है राजनीति के वाले कहते हैं राजनीति ही उसमें सार है कर्म वाले जो जितने हैं ना गांधी से लेकर के राधा कृष्ण और तिलक गोखले। ये सब लोग कर्मी, सब लोगों ने कहा गीता अरविंद नहीं, अरविंद भक्ति नहीं, अरविंद बहुत अच्छा उन लोगों का विचार दिया है। तो ये सब लोग कहते हैं कि गीता पढ़ करके अर्जुन ने कहा, गीता पूरा सुना दिया और कहा कि इन आतताइयों को मारो और उसे मरवा, इसलिए कर्म करना ही गीता का, कर्म कराना ही गीता का उपदेश। हम तो देखते हैं कि अंत में अर्जुन ने क्या किया। यदि अर्जुन संन्यास ले करके चला जाता और भगवान का भजन करने लगता तो हम समझते जिस वैसा किया, किंतु अर्जुन ने गीता सुनने के बाद में धनुष बाण लिए और लेकर युद्ध में भीष्म पितामह द्रोण कर्ण दुःशासन और सबको परास्त करके मार करके खत्म कर दिए। इसलिए गीता का तात्पर्य है कर्म पर। कहते हैं कि ऐसा नहीं, कृष्ण ने अंतिम गीता के श्लोकों में ही कहा सर्वधर्मान परित्यज्यमान एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों को प्रत्याग करके हमारा शरण, हमारे शरण, मैं जैसा करता हूं वैसा कर, तू अपने मन से मत कर। शरणागत किसको कहते हैं? शरणागत माने क्या? जिसका वो शरणागत हो जाता है वो जैसा देगा वैसा खाएगा, जैसा कहेगा वैसा चलेगा। सब तो शरणागत हुआ, और जब अर्जुन शरणागत हो गए तो कहा जैसा इनको पहले मारो, इसके बाद में तुमको दूसरा बात बताएंगे, मारो इनको। किंतु उनका उद्देश्य क्या था इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। प्रसंग जब आया गीता के साधारण रूप में, गीता में तीन योगों का वर्णन है, कर्म योग, ज्ञान योग, जिसमें पहला संपुट है कर्म योग। कर्म नहीं, कर्म योग और कर्म में अंतर है। जिन कर्मों का योग भगवान से कर दिया है और जिसे जिन कर्मों से युक्त हो जाते हैं भगवान, उनको ही कर्म योग कहेंगे। भगवान से रहित कर्मों का कोई भी तात्पर्य नहीं है। नास्तिकों के या और जो दूसरे अज्ञ हैं उनके कर्मों को कर्म योग नहीं कहेंगे। जो कर्म भगवान से युक्त कर देते हैं ऐसे भगवान के लिए किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को कर्म योग कहते हैं। ये नीचे वाला संपुट है बॉक्स का, इसमें ऊपर ढकना खोल दो और बॉक्स के अंदर में विवाह करने जा रहे हैं लड़की की, लड़की के लिए गहने बनाए गए हैं, सोने का, मणियों का, नथ और ये सब हार, गले का एक हार आज का दाम कितने लाख रुपए, सब उसमें रख दिया और ऊपर शक्ति बॉक्स का बंद कर दिया। तो पहले वाला कर्म योग, अंत वाला ज्ञान योग, बीच में भक्ति योग, अंत वाला ज्ञान योग है और बीच वाला क्या है उसी में भक्ति रूपी रत्न रख दिया। किस में रखा गया? कर्म योग के पिचारी में रख दिया गया और ऊपर से बंद। इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीन चीज नहीं है, एक ही चीज के कच्चा आम,
तीन सपान
कच्चा आम एक है, डासा आम माने जरा लाल हो गया है किंतु पका नहीं, कच्चा भी नहीं होता है सर,
खट्टा
कच्चा भी नहीं है, पका भी नहीं है, मीठा। और तीसरा है एकदम पका रसस्त मीठा आम, थोड़ा सा निचोड़ दो तो रस से फल जाएगा, गिर जाएगा। एक ही चीज, वैसे ही कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग से संबंधित पीठ की स्थिति होने पर वो ज्ञान योग होगा और अंत में भक्ति परिपक्व होकर के भगवान को प्राप्त। ये तीन योगों का इसमें वर्णन किया। इसमें से और बारीकी से विचार करते हैं तो इसमें पहला है ब्रह्मज्ञान, दूसरा है परमात्मा ज्ञान और तीसरा है
भगवत।
एक है ब्रह्मज्ञान, पहला ये ब्रह्मज्ञान और दूसरा है ईश्वर का या परमात्मा का ज्ञान और तीसरा है स्वयं भगवान का ज्ञान। और पहले ब्रह्म ज्ञान में हम चलते हैं तो साधारण जितने लोग हैं, जितने साधारण लोग शरीर को मैं मानकर दूसरों को मारते हैं और दूसरों से मरते हैं और उसके सुख और दुख से दुखी होते हैं, ये अज्ञ लोग। अर्जुन इसी अज्ञता को दिखला रहा है क्या, अरे ये मेरे गुरु, ये मेरे भीष्म पितामह जी, दादा परदादा और ये दुर्योधन हमारा भाई, उसका लड़का मेरा भतीजा बेटा और हमारे बंधु बांधव, हमारे मामा श्यालक सब यहां पर खड़े हैं और उनसे मुझे युद्ध करना है। नहीं नहीं करूं, ये देहात अभिमान, देहात अभिमान में शरीर में आत्मा का अभिमान। संसार में प्राय ऐसे ही 99% लोग देहात्मवादी, फूल बुद्धि के हैं। कृष्ण ने कहा अरे युद्ध के समय में कष्टकलम कुतस्वा कष्टकलम इदम कमुपस्थितम, अरे मूर्ख होकर के अज्ञानी होकर के पंडित जैसे बातें कर रहा है क्या इसलिए?
अनुसूचित स्थान पर वातावरण चढ़ा असत्य अनुसूचित स्थान पर वातावरण से भाष नहीं होगा।
यही है सारी तुम प्रज्ञावादांश वाक्य, तुम भाष से तुम बहुत पंडित अपने को समझ रहे किंतु गतासु न गतासु नाम सोचंती पंडिता, अरे पंडित तो वो है जो चले गए हैं और चले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। अब तुम अभी जो नहीं गए हैं उनके लिए ही शोक कर रहा है, जो चले गए हैं उनके लिए शोक करता तो भी कोई बात नहीं, ये तो चले नहीं गए हैं तभी, अरे तुम जाएगा कि नहीं जाएगा तुम अपने लिए शोक कर रहा है, सभी चले जाएंगे, ये राजा लोग पहले नहीं थे और हम पहले नहीं थे ऐसा मत समझो। न जाने कितनी बार आए हैं, हमको याद है ना भगवान, तुमको याद नहीं, मूर्ख की बातें मत करो, हम जो करते हैं वैसा करो। तो अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पण कर दिया, जो कहोगे वही मैं करूंगा। तो उन्होंने बतलाना आरम्भ, पहले बतलाए थे देखो ये तुम बातें मुंह से कर रहे हो, शरीर आत्मा नहीं, शरीर तो बाकांश जीर्णानी जथा विहार नामान गृहनाथी नरो पराणी तथा शरीरानी जीर्णानी संजात नमान दी, ये शरीर कपड़ा है फट जाता है, इसको बदल करके फिर नया कपड़ा पहन लेते, इसमें रोने धोने का आप शो करने का इसमें गुंजाइश कहां है? तुम इसी के लिए रो रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ये कपड़ा नहीं बदलेगा। और वो जो तत्व है जो मैं हूं, नैन छिदन के साथ प्राणी नैन धर्म पावक नापो नशो मारूकर अच्छे जो एम अदाय जो एम अधिकार जो एम हाँ हाँ तो अचल सनातन इत्यादि, वो तो अचल, वो अच्छेद अदाह्य, उसको शास्त्र कट नहीं काट नहीं सकते हैं, तुम उसको वायु स्पर्श नहीं कर सकती है, आग जला नहीं सकती, और तुम उसके लिए शो करता है। जो जाने वाला है वो तो जाएगा, और जो नहीं जाने वाला है वो कभी नहीं जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। ये आत्मा और अनात्मा का ज्ञान बनता है, ये है ब्रह्म ज्ञान से आरंभ होता है। आत्मा अनात्मा का विवेक बताया प्रारंभिक में, ये है ज्ञान, ज्ञान जो का अथवा वो जो ब्रह्म ज्ञान का, ये पहली सीढ़ी बताया है। और बतलाया क्या, जो प्रज्ञामान है उनकी, उनको किसको कहते हैं जिसको प्रज्ञा हुई, क्या है प्रज्ञा, समाधि तक सके सब प्रजाशाति जदा सामान इत्यादि। यहाँ पर यह बतलाया जैसे कछुए हैं, इच्छा होती है अपने पैरों को हाथों को बाहर कर लेते हैं, और फिर इच्छा होती है यदि छू दो उनको तो क्या करेंगे, कर लेंगे, और फिर चलने फिरने लगते हैं, और फिर जरा छू दो ऐसा कर दो ना, इतर लेंगे। ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं वो क्या करते हैं, संसार के कामों में रमते नहीं हैं, उसमें आसक्त नहीं होते हैं, शरीर ये मैं हूं ये नहीं करते, मैं ब्रह्म तत्व हूं, अजर अमर नित्य शाश्वत सनातन, ऐसा वो समझते हैं, और इन कर्मों में आसक्त नहीं होते। और अंत में इनकी अवस्था क्या होती है, ब्रह्मभूत प्रसन्ना कति समे सुषु मद्भक्ति लभते परा। इनकी अंतिम स्टेज है इस ब्रह्म ज्ञान की, बहुत जन जन्मांतरों में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है जब, तो वो किसी भी विषय के लिए शोक नहीं करता, शरीर के विपत्तियों के लिए मरने पर या नष्ट होने पर, वही संसारिक वैभव के लिए, संसारिक मान अपमान के लिए, संसार किसी भी परिस्थिति के लिए शोक को कुछ नहीं करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वो सब समय कुछ मिल जाए तो, न मिल जाए तो, को कोई अपमान कर दे तो, वो कोई कुछ कर दे तो सब कुछ। एक साधु जात नंगा धड़ंगा, एक झोली भी नहीं रखा जिसमें वो कुछ अपना रख सके, कुछ भी नहीं, ऐसे तरह बड़ा मुस्तंद है शरीर, बड़ा
तंदुरुस्त,
स्नान न जाने कितने दिन तो अपने किया, बाल भी नहीं ऐसे बिखरे हुए, किधर चलता है जिधर पैर चलते हैं, कोई एम एंड ऑब्जेक्ट जाने का नहीं, ये कहां जाना चाहिए, पैर जिधर चल रहे हैं उधर ही जा रहा है। महाराज कोई जा रहे थे नैनी या कौन,
जदू महाराज,
जदू महाराज जा रहे थे, जिनसे जदू वर्ण हुआ, जदू वंश उत्पन्न, वो जा रहे थे, मैं महाराज धीराज पृथ्वी का, मुझको चिंताओं का अंत नहीं, मुकुट माने क्या, विश्व की चिंता अपने मुकुट में रख करके सिर पर रख दिया है, सब लोगों की चिंता, हमको अपनी चिंता, राजा को सबकी चिंता होती है, विश्व ब्रह्मांड की, वो चिंता लेकर के मैं मुझे दिन रात चैन से नहीं रहता। देखा जी ये तो बड़े फुर्तीले, बड़े आनंद के साथ में और प्रसन्न होकर के चले जा रहे हैं, कभी हंसते हैं कभी कुछ कभी कुछ, क्या तो उनको सरकार प्रणाम करके बोले महात्मा जी जड़ खाइए स्वरूपीय स्वरूप गए, आप इतने बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं क्यों, आपके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, व्यवहार के लिए कोई चीज खाने के लिए नहीं है, कल अभी क्या खाए हैं वो भी नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं, आप बड़े प्रसन्न हैं। तो उन्होंने अपने 24 गुरुओं की बात बतलाई और उनसे शिक्षा की बात बतलाई, कहीं मैं आसक्त नहीं हूं कहीं भी कुछ, न शरीर में न कहीं, जैसे पृथ्वी आना सकता है, आकाश में सभी कुछ है किंतु बादल आकाश नहीं है ना, किंतु आकाश से बादलों का कोई संपर्क है? कुछ भी संपर्क नहीं, असंग निसंग है। ऐसे में सबसे निसंग होकर के जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं होती हैं उनसे सीख लेता हूँ, जिधर पैर चलता है चल जाता हूँ, बिना मांगे जब भी कोई कुछ दे देता है अभ्यास व्यवस्था ले लेता हूँ, नहीं तो चलता फिरता रहता हूँ। भक्त ये है निर्मम निष्ठुर निरहंकारी, शरीर से कोई नहीं। अच्छा, इनको भक्ति में रख लिया जाए, भक्ति में नहीं रख है गुण, ये सब इसी कोटि के हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो श्लोक बतलाया गया है, आज्ञा एवं गुणान दोषान, इसमें यही इसके पहला श्लोक यही है, उसमें बतलाया है सत्य सप्तम है, सत्य माने ये भी सप्तम है, सत्य माने यहाँ पर एक, ये भी उत्तम है। इस श्लोक के पहले ये एकादश स्कंध का श्लोक है, ये उसी समय का श्लोक है, तो उसमें ये बतला रहे हैं अक्षद्रोह वाला जो है ना,
कृपालु
कृपालु अक्षद्रोह बदान सूची अकिंचन मृदु मौन सर्वैक उपकार इत्यादि 26 गुण बतलाए गए। तो वो उसमें एक बतलाया गया कृष्ण का स्मरण, वो उत्तम व्यक्ति है इसको बतलाया गया। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शौच सप्तम ये भी उत्तम है, जैसे वो लोग 26 गुणों को ले करके हैं उसमें से 25 गुणों को ले लो, एक को हटा दो, कौन को हटाओ, कृष्ण एक शरण हटाओ, आ रहा समझ में ना, उसमें से एक गुण को हटा दो कृष्ण का शरण, कृष्ण का शरणागत छोड़ करके बाकी जो 25 गुण हैं, द्रोहाचरण करने पर भी द्रोह नहीं आचरण करता, क्यों, अरे ये मिथ्या संबंध है, इसमें कुछ है नहीं, दत्तात्रेय जिसमें ये तो शरीर से द्रोह करना, ये तो मूर्ख और कुत्तों का काम है, कुत्ते ने उसको काटा इसने उसको काट दिया तो हम क्यों काटा, अब तो सब द्रोह, द्रोह आचरण करना फिर भी नहीं करते, अब बिना कारण के तो द्रोह करना तो बहुत दूर की बात, ये गुण हुआ ना, और अकृत दो सब पर कृपालु होते हैं, पदान कुछ भी दे देता है अपना दुश्मन, क्यों देते हैं, किसी ने कुछ मांग लिया देखते हैं कि ये तो आसार चीज है, इसे हमारा कोई परमार्थी कल्याण जो मांगा उसको वही दे दिया, कहते ये सब तो मिथ्या बात है, बेकार की चीज है, इसलिए तो इसलिए वो क्योंकि अकिंचन विधु बदान में जितने भी 25 गुण हैं वो लोग उत्तम कहे गए, और वो यदि भगवान का शरणागत हो गए तो उत्तम हुए ना कुछ, वैसे ही वो इतना परिश्रम करके उत्तम है, और ये केवल मात्र भगवान का शरणागत है, कौन जो सबको छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं, कौन सर्वधर्मान प्रत्यमान एकम शरण प्रजा अहम स्वाम सर्व पापेश्वर, वो ऐसे ही उत्तम है, अभी शुद्ध भक्ति नहीं हुई, भक्ति के द्वार पर भी नहीं पहुंचे, केवल भगवान के लिए शरणागत, यह भक्ति। और उतने गुण वाले जो व्यक्ति हैं, इतना परिश्रम करके इतना मन को दमन करके इतना उन्नत, और ये छोटा सा कर दिया क्या, मैं प्रभु आपका हूं, आप जो क्या कहेंगे वैसा, ये भी उत्तम वैसा ही है, इसलिए सच उत्तम है। किंतु महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई परमार्थ से इसका संबंध नहीं, इतना उत्तम होने पर ये दोनों कैसे, पहला वो बतलाया और दूसरा सर्वधर्मान परिचर्यमा एकम शरण, उसी के लिए मैं बतला रहा था कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है उसमें ये सब गुण रहते हैं, क्या वो अंतिम श्लोक से बतला रहा था गीता, ब्रह्मभूत जो ब्रह्मभूत हो जाता है, इन गुणों को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मभूत, प्रसन्न आत्मा सब समय प्रसन्न रहता है, कब उसको एक चाटा जड़ दो सभी प्रसन्न, क्यों चाटा जड़ने से प्रसन्न क्या होता है, मतलब
जड़ से जो तो
धर्मचरी को कोई मार देगा? मान लिया कि हमको कोई कांटा गड़ गया है और कोई कांटा निकाल दे तो क्या होगा? प्रसन्न होगा कि नहीं?
आत्मारा आपका काम ऐसा है, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए कोई प्रतिदिन
वो तो हुआ, किंतु यहाँ पर कुछ बोध हो जिसको किसी को कांटा गड़ गया और कांटा निकाल दो तो उसके लिए शोक करेगा? तो उसी तरह से किसी ने कांटा मार दिया, हमारा पूर्व जन्म का कर्म चला गया, ठीक हुआ नहीं, कर्म का फल मिल करके ये खत्म हो गया, अवस्था ली, बहुत अच्छा, शोक करने की जरूरत बस। और यदि आत्मधर्म प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, अभी तो आदेश हो रहा है ये सर्वधर्मान, अभी धर्मों को छोड़ करके आ जाओ, और इसको डर है कि हमको पाप लगेगा, इस त्रिपुत्र परिवार वर्णाश्रम धर्म का हम छोड़ करके भगवान को जो भजन करने आएंगे तो स्त्री के प्रति हमारा कर्तव्य, इसको छोड़ करके हम कैसे जाएंगे? अभी छोटा बच्चा दिल बिला रहा है, वृद्ध माता पिता है, ये क्या होगा? तो ये पाप लगेगा हमें, इसलिए तो हम लोग अभी नहीं छोड़ रहे, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं वो सब समय प्रसन्न है। अपमान कर दो कभी प्रसन्न, अपमान न करो उसको कुछ सेंट इतर दे दो तो क्या होगा? रख लिया क्या कहीं गिर गया, कोई चिंता नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती कोई कामना ही नहीं करता है, चला जा रहा है, कहां चला जा रहा है कोई कुछ है नहीं, कोई गोल नहीं, कोई पूछ नहीं, ये कहां जाए? कुत्ते महाशय जा रहे हैं, उनका तो कोई गोल है, मील पत्थर उनको चाहिए, वहां पर वो पैर उठाया फिर वहां से लौटा, बड़े बिजी है, व्यस्त है। ऐसे हम लोग भी कर्मों में, इसलिए कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, कोई शोक नहीं। अभी हम नहीं जाएंगे समय पर, हमारे मुवक्किल लोग लौट जाएंगे, और मुवक्किल लौट जाएंगे तो पैसे आएंगे नहीं। सुना यहां से जाकर के भाई आज तो बहुत बड़ा भारी एक मुवक्किल आया, अरे उस समय खबर क्यों नहीं दिया, मैं चला आता, उसके लिए तो सब कुछ होगा। उनको कोई चिंता नहीं है, ब्रह्मभूतों को जगत का लाभ और हानि दोनों बराबर है, बल्कि हो जाए खत्म तो ही अच्छा है। न सोचती किसी चीज की आकांक्षा कामना वासना नहीं करता, न न सोचती मैंने शोक करता है और न आकांक्षा करता है। अब उसको किस लिए दू? अच्छा ऐसे व्यक्ति का मन चंचल होगा कि नहीं? क्रोध किसको होता है, मन चंचल किसका होता है? जिसको कामना है, जिसको कोई कामना वासना है ही नहीं है, उसको मन चिंतित किस लिए होगा? लड़की की शादी करना है, स्त्री कह रही है महाराज जनक से, तो जनक जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत है? हुई कि नहीं हुई, क्या होगा? नहीं हुई तो भी, हो गई तो भी, कोई मतलब नहीं, ऐसे ब्रह्म। तो इसका फिर अंत में क्या होता है? ब्रह्मभूत का प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, समस्त सर्वे सर्वेश भूते, सर्वेश भूतेषु
समस्त प्राणियों का अभाव है।
यहाँ पर समस्त प्राणियों का कहने का ये तात्पर्य है, जिन प्राणियों से उनको दुख होता है, जिन प्राणियों से उनको सुख होता है, ये सर्व प्राणियों का तात्पर्य। जैसे कि सांप है, सिंह है, गाय है, भैंस है, बैल है, मनुष्य है, शत्रु है, मित्र है, सब में गीता में भी बतलाया गया,
विद्या विनय संपन्न,
विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि कविहस्तिनी
सुनीति वसपाति सपाति,
वो पंडित और संपन्न। तो ऐसे समदर्शी हो जाते हैं, सुख दुख सब में सब, कहीं उसका कोई भाव नहीं। ऐसे व्यक्तियों को हृदय निर्मल रहने पर यदि किसी संत का भेद हो गया, दर्शन हो गया, तो क्या होगा? भक्तिम लहते पराम पराम भक्तिम पराभक्तिम। इसमें दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो वो है जिनको साधु समझ, वो तो परामर्श लाभ कर जाए, और जिनको नहीं हुआ वो दो प्रकार के कौन, एक भगवत और भागवत चरणों में
अपराध
और एक निरापराध। जो ये कहते हैं कि भगवान का कार्य नहीं है, भागवत जो है ना ये ठीक ग्रंथ नहीं है, ये तो जिनका चित्त मलिन होता है इन लीलाओं कथाओं को पढ़ते हैं, बहुत से मायावादी अद्वैतवादी लोग ऐसा कहते हैं, भगवान का जन्म ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो उनकी लीला क्या होगी। इसलिए थर्ड क्लास के लोगों को ये अपराधी है। भगवान का कृष्ण गोविंद नाम ये सब औपाधिक नाम है, उनका नाम क्या है, ब्रह्म परमात्मा
त्राता नियंता जगत
नहीं, ब्रह्म शिव ये सब जो है ये उनके नाम। तो इसमें जो शिव ब्रह्म इत्यादि कहते हैं वो लोग तो निरपराधी, और जो लोग वैष्णव की निंदा करते हैं, भागवत की निंदा करते हैं, कृष्ण चरित्र की निंदा करते हैं और कहते हैं कृष्ण का शरीर भी हमारे जैसा माइक था, वो भी मर गए, उन्होंने भी जन्म लिया, ये अपराधी है, इन लोगों को कभी भी भक्ति नहीं दी। और जो निरापराधी हैं उनको वैष्णवों का संग होने पर, जैसे सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में और सनक सनंदन सनातन के चरित्र में ये बताया, उनको ब्रह्मा और सुखदेव को व्यास जी के संग से उनको पराशक्ति लाभ हुई। अब इसमें कहते हैं कि वो जो बतलाया ये श्लोक के नीचे है, कौन सा श्लोक मैंने जो बतला रहा था, ये ब्रह्म ज्ञान जो हुआ ये हुआ पहला, यहां से आरंभ हो गया। दूसरा है इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान, अब गुह्य पर ज्ञान परमात्मा के प्रति जो ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं ये गुह्य। कैसे, गीता का सब ज्ञान बतला करके 18 अध्याय में बतला रहे हैं, ईश्वर सब भूतानां देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सद्भूतानी जंतर्भूतानी मायया। भगवान एक बनाए हैं कर्म चक्र, उसके हृदय में बीचों बीच में वो बैठते हैं और उस पर जीव को बैठा देते हैं, बैठा करके जो लोग उसमें रस लग जाते हैं, मैं कहां हूं ओ, क्या ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, सब हृदय में वो परमात्मा के रूप में भगवान कौन कर रहा है, कृष्ण, मैं अपने अंश परमात्मा से सब जीवों में मैं सरसता और क्या करता हूँ, श्यामयन यंत्र रूढ़ानी, मैं मेरे पास में एक यंत्र है और उस यंत्र पर उसको बैठा देता हूं और यंत्र को चला देता हूं तो वो भी चलने लगते हैं। यंत्र रूढ़ानी माया, अपनी माया के द्वारा कर्म रूपी चक्र के ऊपर में उनको बैठा करके उनको आरूढ़ करा करके भ्रमण करा, मैंने कहां भ्रमण करा रहा हूं, 84 लाख प्रकार की योनियों के यंत्रों में बैठा करके कर्म में आसक्ति उनको रखने की वजह से उच्च और नीच योनियों में, देवता योनियों में इनको सुख और दुख में समझ रहा है, कौन करा रहा है, यंत्र रूढ़ानी माया के द्वारा। वो कहता कि मैंने किया किंतु मैंने नहीं किया, यही उसका दोष है। जो कुछ भी कार्य होता है उसमें भगवान का अनुमोदन होना चाहिए, उसमें जीव की इच्छा होनी चाहिए, माया का योगदान होना चाहिए, पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए, इतना मिलकर के तो कर्म होता है, किंतु ये क्या जीव का क्या होता है, अहंकार विदुरात्मा करता ही वो अपने को करता कहता, अहम लोग नहीं करते। ये जो बतलाया गया इसके बाद ही कहते हैं, इसका बात कर सो क्या सत्य बीतते तदनंतरम ये, और एक इसके बाद में है कि वो इसके बाद में भगवान को आत्मसमर्पण करके पराशांति अधिगच्छति त्वमेव सर्वभावेन भारत सत्प्रसादात् परम शांति पाप के शांति। इसको कहा गया दुष्यपर, अर्थात वो जो परमात्मा है जो कि कर्म चक्र में जीवों को भ्रमण करा रहे हैं, उनके हृदय में रहते हैं, उनको कोई यदि जान ले और उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, ये गुह्यतर ज्ञान। और क्या श्लोक,
तमेव शरणम
तमेव शरणम सब भावेन, सब भाव से आपके किसके, वो जो परमात्मा कहा ना जो जीवों के नियंता है, उनके चरणों में यदि वो आत्मसमर्पण कर देता है तो उसके प्रसाद से, प्रसाद मैंने कृपा से शांति स्थानम प्राप्त होता है, सर्वत स्थान और शांति ये गुरु है। अब उसके बाद में कहते हैं भगवान, अरे तुम मेरे बड़े प्रिय, तुमको मैं बहुत भटकाऊंगा नहीं, तुम सबसे बड़े मेरे प्रिय हो, इसलिए सर्वभूत या तमाम तुमने परम बचा क्या, तो तुम हमारे सबसे प्रिय हो, दृढ़मिति तो बक्षामिते हितम, तुम्हारे हित के लिए मैं बतला रहा हूं, सबसे गोपनीय चीजें सर्वगुह्य तमम, पहले बतलाया गुह्य ब्रह्म ज्ञान है, गुह्य चेत अचेत का, चेतन अचेतन का विवेक जो है ये हुआ गुह्य, आया समझ में। और उसके बाद में संसार के प्रति अनासक्त हो करके सब कुछ करते हैं, उसमें किसी में प्रसन्न नहीं रह, सब में प्रसन्न रहते हैं, शोक शोक नहीं करते, ये ब्रह्म ज्ञान है। उसकी अंतिम परिधि है ब्रह्मभूत प्रसन्न। दूसरा आरंभ हुआ, इतना करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के जीवों में हृदय में भगवान रहते हैं और सबको वही कर्म का आरूढ़ रख करके उनका फल देने वाले हैं, क्यों ना उनके शरणागत हो जाओ, यदि उनका शरणागत हो जाएगा तो उनकी कृपा से अपने आप शांति सुख सब कुछ होगा, उससे ये सहज है, किंतु उससे उन्नत। और अब क्या बतला रहे हैं तुमको, मैं बतला रहा हूं, मैं सत्यम से प्रतिजानो प्रियोति में, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कृष्ण यहां प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा जे प्रभु मैं मथुरा वासियों के लोगों के ऊपर में जिनका मथुरा में जन्म हुआ उन पर मैं विश्वास नहीं करता, वो तो 10 बार बात बदलते हैं, यहाँ के जितने लोग हैं चौवन से लेकर के यहाँ के रहने वाले बैजनेस बिजनेस करने वाले जो कुछ भी मथुरा में जन्म लिया वो सब बातों अपने अपने बातों को बदलने वाले, इसलिए आप फिर बदल देंगे कुछ तो आप पर विश्वास नहीं। तो मैंने कहा मैं शपथ करता हूं, तो मैंने कहा ये इस शपथ को भी नहीं मानता ठीक, अच्छा मैं तुम्हारी शपथ करता हूं, ते मैंने तुम्हारा तुम्हारे लिए शपथ करता, तू भक्त है ना, प्रतिज्ञा में मैं प्रतिज्ञा करता हूं ये तुम भक्त है, मैं तुम्हारे जब भी होगा तब भक्तों की बात किया, तुम्हारी बात कभी भी झूठी नहीं होगी, ये विश्वास रखो, मैं तुम्हारी तुम्हारे सिर पर रख करके मैं सबको शपथ करता हूं ये मैं झूठ नहीं कहूंगा। क्या कहा उन्होंने, तब मन मना भव मद भक्तो मदियादि माम एव इच्छसि प्रतिजानो प्रिय, मन मना भव चित्त को हमारे अंदर में दे दो, जैसे किसने दिया, कृष्ण ने स्वयं कहा कि ऐसा किसने दिया, जगत में किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम सर्वोत्तम रूप में दो। प्रहलाद महाराज ने कुछ दिया किंतु ज्ञान तक ही सीमित रहे, अपना हृदय नहीं दिया, मस्तिष्क दिया, हृदय नहीं दे सकते। सब जगह भगवान को देख रहे हैं और सब में भगवान को भी देख रहे हैं, किया क्या उस भगवान की, जो जिसको देख रहे हैं उनकी चरण सेवा किया, उनको पानी पिलाया, न क्या किया उन्होंने, देखा तो सब, तो देखने तक समित रहे। इसलिए ये ज्ञानी भक्त सबके अंतर्गत में है। अनन्य भक्त गोपियों जैसे अपने हृदय को देकर के उनकी सेवा करने वाले नहीं है, इसके लिए फिर चलना पड़ेगा गोपियों के यहां। कृष्ण से थोड़ी सी थोड़ा सा वियोग उनका हो, गोपियां कैसे उन्मत्त हो गई, पैरों से पूछे कृष्ण को देखा, हमारे कृष्ण को देखा, किरणों से पूछ रही हैं, नदी से पूछ रही हैं, जिसको देख रही हैं उसके, यहां तक कि तन्मय होकर के अपने को कृष्ण मान करके गोवर्धन को धारण करने की लीला कर रही हैं। कोई सूचना को पकड़ लिया, सूचना जैसे कोई स्त्री को, और सूचना समझ करके उसके स्तनपान करने लगी, अपने को कृष्ण मान कर, कोई यशोदा बन करके और कोई कृष्ण स्वयं बन करके वो रो रही हैं, मैया अब नहीं, अब मैं चोरी नहीं करूं, और रो रहे हैं। ऐसी सब लीलाओं को अंत में कैसी, जैसे कृष्ण को सब वर्ष पर दे देती हैं, ऐसे पागलनी उन्मादग्रस्त हो जाती है, जिसका मैं उदाहरण देकर के पास आऊ, कैसा मनमना भाव। कोई गोपी खड़ी है, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं,